ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। ईरान ने इसराइल के हमलों की जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिसे ऑपरेशन सीवियर पनिशमेंट नाम दिया गया है। तेल अवीव और यरूशलम में बड़े पैमाने पर हुई बमबारी के कारण इसराइल में हवाई हमले के सायरन बजा दिए गए, जिससे लाखों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। एक रिपोर्ट।
इसराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष लगातार विकट रूप लेता जा रहा है। ऑपरेशन सीवियर पनिशमेंट से कुछ घंटे पहले ही इसराइल के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया और शीर्ष सैन्य कमांडरों को मार दिया गया। इसराइली अधिकारियों ने ईरान के हमले की पुष्टि की है। बेन गुरियन हवाई अड्डे को तुरंत बंद कर दिया गया और हजारों इसराइली सैनिक तैनात कर दिए गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान की मिसाइलों ने रिहायशी इलाकों में इसराइल की हवाई सुरक्षा को नाकाम कर दिया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि हमला विशेष रूप से इसराइल द्वारा नातांज परमाणु ठिकाने को नष्ट करने और ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों की हत्या के जवाब में किया गया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्स ने आरोप लगाया है कि ईरान ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इसराइल इसका करारा जवाब देगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति के बारे में फोन पर चर्चा की। इस संदर्भ में सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री नेतन्याहू के साथ बातचीत में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को फोन पर मौजूदा घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि देश में आगामी महीनों के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। उन्होंने पेट्रोलियम सचिव और ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। ईंधन आपूर्ति के बारे में दी गई ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान पर इसराइल पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में कल काफी वृद्धि हुई। श्री पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति उपलब्धता, वहन करने की क्षमता और स्थिरता की सफलता पर आधारित है। नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद निवारक उपाय के रूप में जेनेक्स इंजन से लैस बोइंग 787-8 और 787-9 ड्रीमलाइनर विमानों के अतिरिक्त सुरक्षा निरीक्षण के लिए एयर इंडिया को निर्देश दिया है। डीजीसीए ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय करके तत्काल प्रभाव से निरीक्षण किया जाना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष मेहुल शाह ने कहा है कि बृहस्पतिवार को अहमदाबाद में हवाई अड्डे के पास छात्रावास पर एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 विद्यार्थी और एक डॉक्टर की पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि घायलों की मदद के लिए 100 से अधिक डॉक्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। श्री मेहुल शाह ने बताया कि छात्रावास परिसर में 45 से अधिक विद्यार्थियों को बचा लिया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT क्रिप्टो करेंसी में निवेश के माध्यम से कर चोरी और बेहिसाब आमदनी के स्रोतों की जांच कर रहा है। CBDT के सूत्रों ने बताया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA लेनदेन में शामिल और आयकर अधिनियम 1961 का पालन न कर रही संस्थाओं तथा व्यक्तियों के सत्यापन के लिए पहचान कर ली गई है। जानकारी के अनुसार कर बोर्ड ने हाल ही में हजारों दोषी लोगों को उनके ITR की समीक्षा करने और अद्यतन करने के लिए ईमेल भेजे हैं। दिल्ली सरकार शीघ्र ही एक नई आबकारी नीति लाएगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बिक्री तथा वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई नीति में शराब की वैज्ञानिक जांच, विक्रय व्यवस्था का डिजिटीकरण, अवैध बिक्री पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सहित आबकारी प्रणाली में कई सुधार शामिल किए जाएंगे। जर्मनी के म्यूनिक में विश्व कप निशानेबाजी में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फ्रांस की कैमिली को हराया। विश्व कप में सुरुचि का इस स्पर्धा में ये लगातार तीसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। इससे पहले राइफल स्पर्धाओं में एलावेनिल बलारिवन और सिफ्त कौर समरा ने कांस्य पदक जीते थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।